एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
ताकि मैं हर जंग घुटनों
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास फिर से आते हैं, हमारे मनों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे श्रोताओं के संगो उनके मनों को उनके हृदयों को खोल दे और समझ शक्ति दे, ताकि वे तेरे वचन को तेरे संदेश को समझ सके और तेरे राह में चलने सके। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरा वचन तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है अधम के धन से मित्र। प्यारो, मसीह का आगमन तीव्र संसारिकता के समय हुआ था। लोग शाश्वत को लौकिक के अधीन कर रहे थे, भविष्य के दावों को वर्तमान के मामलों के अधीन कर रहे थे। वे भूतों को वास्तविकता समझ रहे थे और वास्तविकताओं को भूत समझ रहे थे। उन्होंने विश्वास से अदृश्य दुनिया को नहीं देखा। शैतान ने उनके सामने इस जीवन की चीजों को सर्व आकर्षक और सर्व अवशोषित के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने उसके प्रलोभनों पर ध्यान दिया। मसीह इस व्यवस्था को बदलने के लिए आए थे। उन्होंने उस मंत्र को तोड़ने की कोशिश की जिसके द्वारा मनुष्य मोहित और फंसे हुए थे। अपनी शिक्षा में उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के दावों को समायोजित करने, मनुष्य के विचारों को वर्तमान से भविष्य की ओर मोड़ने का प्रयास किया। समय की चीजों की खोज से उन्होंने उन्हें अनंत काल के लिए प्रावधान करने के लिए बुलाया। हम यह कहानी या दृष्टांत बाइबल में पाते हैं। एक धनी व्यक्ति था, उसने कहा, जिसके पास एक प्रबंधक था और उस पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने उसकी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी है। धनी व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति इस नौकर के हाथों में छोड़ दी थी, लेकिन नौकर विश्वासघाती था और मालिक को यकीन था कि वह विश्वासघात कर रहा था, व्यवस्थित रूप से लूटा था। उसने उसे अब अपनी सेवा में नहीं रखने का निश्चय किया और उसने उसके खातों की जांच करने को कहा। उसने कहा, यह कैसे हुआ कि मैं तुम्हारे बारे में यह सुन रहा हूँ? अपने प्रबंधकीय कार्य का लेखा जोखा दो, क्योंकि तुम अब प्रबंधक नहीं रह सकते। अपने सामने बर्खास्तगी की संभावना के साथ प्रबंधक ने अपने लिए तीन विकल्प खुले देखे। उसे काम करना होगा, भीख मांगनी होगी या भूखा रहना होगा। और उसने अपने मन में सोचा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी मुझसे प्रबंधकी का काम छीन रहा है। मैं खुदाई नहीं कर सकता, भीख मांगने में मुझे शर्म आती है। मैं तय कर लिया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि जब मैं प्रबंधकी के काम से बाहर हो जाऊँ तो वे मुझे अपने घरों में ले लें। इसलिए उसने अपने स्वामी के हर एक देनदार को अपने पास बुलाया और पहले से पूछा, तूने मेरे स्वामी को कितना देना है? उसने कहा, 100 शेर तेल। और उसने उससे कहा, अपना बिल लो और जल्दी से बैठ जाओ और 50 लिखो। फिर उसने दूसरे से पूछा, और तूने कितना देना है? उसने कहा, 100 शेर गेहूं। और उसने उससे कहा, अपना बिल लो और 80 लिखो। इस विश्वासघाती सेवक ने अपनी बेईमानी में दूसरों को भी भागीदार बनाया। उसने अपने स्वामी को लाभ पहुंचाने के लिए धोखा दिया और इस लाभ को स्वीकार करके उन्होंने अपने आप को अपने घरों में मित्र के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। और प्रभु ने अन्यायी भंडारी की प्रशंसा की, क्योंकि उसने बुद्धिमानी से काम किया था। सांसारिक व्यक्ति ने उस व्यक्ति की चतुराई की प्रशंसा की जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन धनी व्यक्ति की प्रशंसा परमेश्वर की प्रशंसा नहीं थी। मसीह ने अन्यायी भंडारी की प्रशंसा नहीं की, बल्कि उसने एक प्रसिद्ध घटना का उपयोग उस पाठ को स्पष्ट करने के लिए किया जिसे वह सिखाना चाहता था। उसने कहा, अधम के धन से अपने लिए मित्र बनाओ ताकि जब वह समाप्त हो जाए तो वे तुम्हें अनंत निवास स्थानों में ले लें। उधारकर्ता को कर वसूलने वालों और पापियों के साथ घुलने मिलने के लिए फरीसियों द्वारा धिक्कारा गया था, लेकिन उनमें उनकी रुचि कम नहीं हुई, ना ही उनके लिए उनके प्रयास बंद हुए। उन्होंने देखा कि उनके काम ने उन्हें प्रलोभन में डाल दिया। वे बुराई के प्रलोभनों से घिरे हुए थे। पहला गलत कदम आसान था और अधिक बेईमानी और बढ़ते अपराधों की ओर तेजी से उतरना था। मसीह हर तरह से उन्हें उच्च लक्ष्यों और महान सिद्धांतों की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। विश्वासघाती प्रबंधक की कहानी में उनके मन में यही उद्देश्य था। कर वसूलने वालों के बीच ठीक वैसा ही मामला था जैसा कि दृष्टांत में दर्शाया गया है और मसीह के वर्णन में उन्होंने अपनी खुद की हरकतों को पहचाना। उनका ध्यान आकर्षित हुआ और अपनी खुद की बेईमानी की हरकतों की तस्वीर से उनमें से कई ने आध्यात्मिक सत्य का पाठ सीखा। हालांकि यह दृष्टांत सीधे शिष्यों को बताया गया था, उन्हें पहले सत्य का खमीर दिया गया था और उनके माध्यम से इसे दूसरों तक पहुंचाया जाना था। मसीह की अधिकांश शिक्षाएं शिष्यों को पहले समझ में नहीं आई और अक्सर ऐसा लगता था कि उनके पाठ लगभग भूल गए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रभाव में यह सत्य बाद में समझ में आया, स्पष्टता के साथ पुनर्जीवित किया गया और शिष्यों के माध्यम से उन्हें कलीसिया में शामिल किए गए नए धर्मांतरित लोगों के सामने स्पष्ट रूप से लाया गया। और उद्धारकर्ता फरीसियों से भी बात कर रहा था, उसने यह आशा नहीं छोड़ी कि वे उसके शब्दों की ताकत को समझेंगे। बहुत से लोग गहराई से दोषी थे और जैसा कि उन्हें पवित्र आत्मा के निर्देश के तहत सच्चाई सुनानी चाहिए, बहुत से लोग मसीह में विश्वासी बन गए। फरीसियों ने मसीह पर चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ घुलने मिलने का आरोप लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। अब वह इन आरोप लगाने वालों को फटकार लगाता है। चुंगी लेने वालों के बीच जो दृश्य हुआ था उसे वह फरीसियों के सामने रखता है, न केवल उनके काम करने के तरीके को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि वे अपनी गलतियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। विश्वासघाती प्रबंधक को उसके स्वामी की संपत्ति परोपकारी उद्देश्यों के लिए सौंपी गई थी, लेकिन उसने उनका उपयोग अपने लिए किया। इसराइल के साथ भी ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को चुना था, उसने अपने ऊंचे हाथ से उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, उसने उन्हें दुनिया के आशीर्वाद के लिए पवित्र सत्य का भंडार बनाया था, उसने उन्हें जीवित वाणी सौंपी थी ताकि वे दूसरों को प्रकाश का संचार कर सके। लेकिन उसके प्रबंधकों ने इन उपहारों का उपयोग खुद को समृद्ध और ऊंचा करने के लिए किया था। फरीसी अहंकार और आत्म धार्मिकता से भरे हुए परमेश्वर द्वारा उन्हें दी गई वस्तुओं का गलत उपयोग उसकी महिमा के लिए कर रहे थे। दृष्टांत में नौकर ने भविष्य के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था, कोई तैयारी नहीं किया था। दूसरों के लाभ के लिए उसे जो सामान सौंपा गया था उसने उसका इस्तेमाल अपने लिए किया, लेकिन उसने केवल वर्तमान के बारे में सोचा। जब उससे प्रबंधकीय दायित्व छीन लिया जाएगा तो उसके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके मालिक का सामान अभी भी उसके हाथ में था और उसने निश्चय किया कि भविष्य की जरूरतों से बचने के लिए उन्हें इस्तेमाल करना। इसे पूरा करने के लिए उसे एक नई योजना पर काम करना होगा। खुद के लिए इकट्ठा करने के बजाय उसे दूसरों को देना होगा। इस तरह वह दोस्तों को सुरक्षित कर सकता था जो उसे बाहर निकाले जाने पर उसका स्वागत करेंगे। फरीसियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जल्द ही उनसे प्रबंधकीय जिम्मेदारी छीन ली जाने वाली थी और उन्हें भविष्य के लिए प्रबंध करने के लिए कहा गया। दूसरों की भलाई की तलाश करके ही वे खुद को लाभ पहुंचा सकते थे। वर्तमान जीवन में ईश्वर के उपहारों को प्रदान करके ही वे अनंतकाल के लिए प्रबंध कर सकते थे। दृष्टांत बताने के बाद मसीह ने कहा, इस दुनिया के बच्चे अपनी पीढ़ी में प्रकाश के बच्चों से ज़्यादा समझदार हैं, यानी सांसारिक रूप से समझदार लोग खुद की सेवा करने में ज़्यादा समझदारी और ईमानदारी दिखाते हैं बजाय इसके कि परमेश्वर की संतानें उनकी सेवा में ज़्यादा समझदारी और ईमानदारी दिखाती हैं। मसीह के दिन में भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। ऐसे कई लोगों के जीवन को देखें जो ईसाई होने का दावा करते हैं। प्रभु ने उन्हें क्षमताएं, शक्ति और प्रभाव दिया है, उसने उन्हें धन सौंपा है ताकि वे महान छुटकारे में उसके साथ सहकर्मी बन सके। उसके सभी उपहारों का उपयोग मानवता को आशीर्वाद देने, पीड़ितों और जरूरतमंदों को राहत देने में किया जाना चाहिए। हमें भूखे को खाना खिलाना है, नंगे को कपड़े पहनाने हैं, विधवा और अनाथ की देखभाल करनी है, संकटग्रस्त और दलित लोगों की सेवा करनी है। परमेश्वर का कभी यह मतलब नहीं था कि दुनिया में व्यापक दुख मौजूद होना चाहिए। उसका कभी यह मतलब नहीं था कि एक आदमी के पास जीवन की विलासिता की बहुतायत होनी चाहिए, जबकि दूसरों के बच्चे रोटी के लिए रोएं। जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं से परे साधन मनुष्य को भलाई करने, मानवता को आशीर्वाद देने के लिए सौंपे गए हैं। प्रभु कहते हैं, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेच दो और दान कर दो। लूका 12:33 में हम पढ़ते हैं, बांटने के लिए तैयार रहो, संवाद करने के लिए तैयार रहो। 1 तिमोथियस 6:18 कहता है, जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को बुलाओ। लिखा है लूका 14:13 में, दुष्टता के बंधन खोल दो, भारी बोझ उतार दो, उत्पीड़ितों को स्वतंत्र करो, हर जुए को तोड़ दो, भूखों को अपनी रोटी दो, बेघर गरीबों को अपने घर ले आओ। जब तुम किसी को नंगा देखो उसे ओढ़ लो, उसे ओढ़ाओ, पीड़ित आत्मा को तृप्त करो, कहता है यशायाह 58:6-10। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, मरकुस 16:15। ये प्रभु की आज्ञाएं हैं। क्या मसीहों का बड़ा समूह यह काम कर रहा है? अफसोस, कितने लोग ईश्वर के उपहारों को अपने लिए हड़प रहे हैं, कितने लोग घर के लिए घर और जमीन के लिए जमीन बढ़ा रहे हैं, कितने लोग अपने पैसे को मौज मस्ती, भूख की संतुष्टि, फिजूल खर्ची वाले घरों, फर्नीचर और कपड़ों पर खर्च कर रहे हैं। उनके साथी दुख और अपराध, बीमारी और मौत के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक दया भरी नज़र, एक शब्द या सहानुभूति के काम के बिना बहुत से लोग नष्ट हो रहे हैं। मनुष्य परमेश्वर के प्रति डकैती के दोषी हैं। साधनों का उनका स्वार्थी उपयोग परमेश्वर की महिमा को छीन लेता है, जो पीड़ित मानवता की राहत और आत्माओं के उद्धार में उन्हें वापस परिलक्षित होनी चाहिए। वे उसका गबन कर रहे हैं, सौंपा हुआ माल। प्रभु घोषणा करते हैं, मैं न्याय करने के लिए तुम्हारे निकट आऊंगा, और जो मजदूर को उसकी मजदूरी में, विधवा और अनाथ को सताते और परदेशी को उसके अधिकार से वंचित करते हैं, उनके विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। क्या मनुष्य परमेश्वर को लूटेगा? तो भी तुमने मुझे लूटा है, परंतु तुम कहते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और भेंट में तुम शापित हो, क्योंकि तुमने मुझे अर्थात इस सारी जाति को लूटा है। 3:5-9 में पढ़ते हैं, हे धनवानों, अब जाओ, तुम्हारा धन भ्रष्ट हो गया है और तुम्हारे वस्त्र मैले हो गए हैं, तुम्हारा सोना चांदी सड़ गया है और उन पर काई लगी हुई है, और वे तुम्हारे विरुद्ध साक्षी देंगे। तुमने अंतिम दिनों के लिए धन इकट्ठा किया है, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में रहे और उच्छृंखल रहे। देखो, तुम्हारे खेतों की कटाई करने वाले मजदूरों की मजदूरी जो तुमने धोखे से रख ली है चिल्ला रही है, और कटाई करने वालों की चिल्लाहट सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। 5:1-3-5-4। हर किसी को अपने सौंपे गए उपहारों को प्रस्तुत करना होगा। अंतिम निर्णय के दिन लोगों द्वारा संचित धन उनके लिए बेकार हो जाएगा। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे वे अपना कह सकें। जो लोग सांसारिक धन संचय करने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे अपने शाश्वत कल्याण के लिए कम बुद्धि, कम विचार और कम परवाह दिखाते हैं। जितना कि अन्यायी प्रबंधक ने अपने सांसारिक भरण पोषण के लिए किया, अपनी पीढ़ी के इस संसार के बच्चों की तुलना में कम बुद्धिमान ये घोषित प्रकाश के बच्चे हैं। ये वे लोग हैं जिनके बारे में भविष्यवक्ता ने महान न्याय के दिन के अपने दर्शन में घोषणा की। एक आदमी अपनी चांदी और सोने की मूर्तियों को, जिन्हें उन्होंने पूजा करने के लिए बनाया था, छुछंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंक देगा, ताकि वे यहोवा के भय और उसके प्रताप की महिमा के कारण चट्टानों की दरारों और उबर खाबर चट्टानों की चोटियों में जा घुसे जब वह पृथ्वी को हिलाने के लिए उठेगा, कहता है यशायाह 2:20-21 में। इसलिए प्यारों, मसीह कहते हैं अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बनाओ, ताकि जब वह समाप्त हो जाए तो वे तुम्हें अनंत निवास में ले लें। परमेश्वर और मसीह तथा स्वर्गदूत सभी पीड़ित और पापी लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए खुद को परमेश्वर को सौंप दे। इस उद्देश्य के लिए उनके उपहारों का उपयोग करें और आप स्वर्गीय प्राणियों के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं। आपका दिल उनके साथ सहानुभूति में धड़केगा। आप चरित्र में उनके साथ आत्मसात हो जाएंगे। आपके लिए अनंत निवासों में रहने वाले ये लोग अजनबी नहीं होंगे। जब संसारिक चीजें खत्म हो जाएंगी तो स्वर्ग के द्वार पर पहरेदार आपका स्वागत करेंगे और दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए इस्तेमाल किए गए साधन प्रतिफल लाएंगे। सही तरीके से इस्तेमाल किए गए धन से बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आत्माएं मसीह के लिए जीती जाएंगी। जो मसीह के जीवन योजना का पालन करता है वह परमेश्वर के दरबार में उन लोगों को देखेगा जिनके लिए उसने धरती पर मेहनत की है। आइए प्यारों, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, और हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, तूने हमें जो समय दिया है उसका हम सही उपयोग करें लोगों की सेवा करने के लिए और तेरा काम करने के लिए, तेरा महिमा करने के लिए पिता। और हम तेरा
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।